जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सद ग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ, ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग।
ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, हृदय कल्पतरु है, ऐसा वृक्ष जो राग द्वेष आदि सर्पों से रहित है, उससे कौन पदार्थ है जो प्राप्त न हो। शुद्ध हृदय से सब कुछ प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, जो बुद्धिमान है और शास्त्र का ज्ञाता भी है परंतु राग द्वेष संयुक्त है, वह सियार की तरह नीच है, उसको धिक्कार है। जिन पदार्थों को पाने के निमित्त लोग यत्न करते हैं वे आते और जाते रहते हैं। धन को इकट्ठा कोई करता है और ले कोई जाता है, तब राग द्वेष किसका करिए। जो कुछ प्रारब्ध है सो अवश्य होता है, धन का व्यर्थ यत्न क्यों करिए। बांधव और वस्त्र आते हैं और फिर जाते भी हैं। जैसे समुद्र में जल तंतुओं का आश्रय बुद्धिमान नहीं लेते, वैसे ही जगत के पदार्थों का आश्रय ज्ञानवान नहीं लेते। भाव अभाव रूप परमेश्वर की माया है। संसार की रचना स्वप्न की तरह है, उसमें जो आसक्त होते हैं उनको वह सर्पिणी की तरह डसता है। धन बांधव और जगत वास्तव में मिथ्या ही है, अज्ञान से सत्य भासित होते हैं। हे रामचंद्र जी, जो आदि में न हो और अंत में भी न रहे पर मध्य में भासित हो, उसको भी असत्य जानिए। जैसे आकाश में फूल असत्य है, वैसे ही संसार रचना असत्य है। जैसे संकल्प की रचना असत्य है, जैसे गंधर्व नगर सुंदर भासित होता है पर नष्ट हो जाता है, और जैसे स्वप्नपुर दीर्घ काल का भासित होता है पर भ्रम रूप है, वैसे यह जगत असत्य रूप और भ्रम मात्र है। केवल संकल्प रूप अभ्यास के वश से दृढ़ता को प्राप्त हुआ है। दीवार जो साकार भासित होती है, वह आकार से रहित प्रकाश रूप है, और आत्मपद सुषुप्ति की तरह अद्वैत रूप है। उस सुषुप्ति पद से जीव जब गिरता है तब दीर्घ स्वप्न देखता है। हे रामचंद्र जी, अज्ञान रूपी निद्रा में जो अपने स्वभाव से गिरा है, संसार रूपी स्वप्न श्रम को देखता है, जब अज्ञान रूपी निद्रा का अभाव हो तब यह आत्मराज्य और निर्विकल्प मुदित आत्मपद को प्राप्त होता है। जैसे सूर्य को देखकर कमल प्रफुल्लित हो आते हैं, वैसे ही ज्ञान से शुभ गुण विकसित होते हैं। आत्मरूपी सूर्य सब दुखों से रहित है। जो पुरुष निद्रा में सोया है वह सूक्ष्म वचनों से नहीं जागता पर बड़े शब्द करने और जल डालने से जागता है, वैसे ही मैंने मेघ की तरह गरज कर तुम पर वचन रूपी जल की वर्षा की है। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग पहला। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ऐसे समाधि तो किसी को नहीं प्राप्त होती कि शिला के समान हो जावे। मैं सब स्थान देख रहा हूं, कदाचित ऐसी भी समाधि हो तो भी संसार सत्ता निवृत्त न होगी, क्योंकि अज्ञान रूपी बीज निवृत्त नहीं हुआ। समाधि ऐसी है जैसे जागृत से सुषुप्ति होती है, क्योंकि अज्ञान रूपी वासना के कारण सुषुप्ति से फिर जागृत आती है। वैसे ही अज्ञान रूपी वासना से समाधि से भी जाग जाता है, क्योंकि उसको वासना खींच ले जाती है। हे रामचंद्र जी, तब समाधि आदि को से संसार भ्रम निवृत्त नहीं होता। जैसे कांजे से क्षुधा किसी की निवृत्त नहीं होती, वैसे ही तप और समाधि से चित्त की वृत्ति एकाग्र होती है, परंतु संसार निवृत्त नहीं होता। जब तक चित्त समाधि में लगा रहता है तब तक सुख होता है, और जब उत्थान होता है तब फिर नाना प्रकार के शब्दों और अर्थों से युक्त संसार भासता है। हे रामचंद्र जी, अज्ञान से जगत भासता है और विचार से निवृत्त होता है। जैसे बालक को अपनी अज्ञानता से परछाई में वैताल की कल्पना होती है और ज्ञान से निवृत्त होती है, वैसे यह जगत अविचार से भासता है और विचार से निवृत्त होता है। हे रामचंद्र जी, वास्तव में जगत उपजा नहीं, असत रूप है। जो स्वरूप से उपजा होता तो निवृत्त न होता, पर यह तो विचार से निवृत्त होता है। इससे जाना जाता है कि कुछ नहीं बना। जो वस्तु सत्य होती है उसकी निवृत्ति नहीं होती, और जो असत है सो स्थिर नहीं रहती। हे रामचंद्र जी, सत स्वरूप आत्मा का अभाव कदाचित नहीं होता और असत रूप जगत स्थिर नहीं होता। जगत आत्मा में आभास रूप है, आरंभ और परिणाम से कुछ उपजा नहीं। जहां चैतन्य नहीं होता वहां सृष्टि भी नहीं होती, क्योंकि सृष्टि आभास रूप है। आत्मा आदर्श रूप है, उसमें अनंत सृष्टियां प्रतिबिंबित होती है। आदर्श में प्रतिबिंब भी तब होता है जब दूसरा निकट होता है, पर आत्मा के निकट दूसरा और कोई प्रतिबिंब नहीं होता, क्योंकि आभास रूप है। एक ही आत्मसत्ता चैतन्यता से द्वैत किनाई होकर भासती है, पर कुछ बना नहीं। जैसे फूल में सुगंध होती है, तिलों में तेल होता है और अग्नि में उष्णता होती है, और जैसे मनोराज की सृष्टि होती है, वैसे ही आत्मा में जगत है। जैसे मनोराज से मनोराज की सृष्टि भिन्न नहीं होती, वैसे यह जगत आत्मा से भिन्न नहीं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, एक आकाशज आख्यान जो श्रवण का भूषण और बोध का कारण है उसको सुनिए। आकाशज नामक एक ब्राह्मण शुद्ध चिदंश से उत्पन्न हुए। वह धर्मनिष्ठ सदा आत्मा में स्थिर रहते थे, भले प्रकार प्रजा का पालन करते थे और चिरंजीवी थे। तब मृत्यु विचार करने लगी कि मैं अविनाशी हूं और जो जीव उपजते हैं उनको मारती हूं, परंतु इस ब्राह्मण को मैं नहीं मार सकती। जैसे खड़ंग की धार पत्थर पर चलाने से कुंठित हो जाती है, वैसे ही मेरी शक्ति इस ब्राह्मण पर कुंठित हो गई है। हे रामचंद्र जी, ऐसा विचार कर मृत्यु ब्राह्मण को भोजन करने के निमित्त उठी, और जैसे श्रेष्ठ पुरुष अपने आचार कर्म को नहीं त्याग करते, वैसे ही मृत्यु भी अपने कर्मों को विचार कर चली। जब ब्राह्मण के गृह में मृत्यु ने प्रवेश किया, तो तो जैसे प्रलय काल में महातेज संयुक्त अग्नि सब पदार्थों को जलाने लगती है, वैसे ही अग्नि इसके जलाने से उड़ी और आगे दौड़ के जहाँ ब्राह्मण बैठा था अंतःपुर में जाकर पकड़ने लगी। पर जैसे बड़ा बलवान पुरुष भी और के संकल्प रूप पुरुष को नहीं पकड़ सकता, वैसे ही मृत्यु ब्राह्मण को न पकड़ सकी। तब उसने धर्मराज के गृह में जाकर कहा, हे भगवान, जो कोई उपजा है उसको मैं अवश्य भोजन करती हूँ, परंतु एक ब्राह्मण जो आकाश से उपजा है उसको मैं वश में नहीं कर सके। यह क्या कारण है? यम बोले, हे मृत्यु, तुम किसी को नहीं मार सकती। जो कोई मरता है वह अपने कर्मों से मरता है। जो कोई कर्मों का करता है उसके मारने को तुम समर्थ हो, पर जिसका कोई कर्म नहीं उसके मारने को तुम समर्थ नहीं हो। इससे तुम जाकर उस ब्राह्मण के कर्म खोजो, जब कर्म पावेगी तब उसके मारने को समर्थ होगी, अन्यथा समर्थ न होगी। हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार यम ने कहा तब कर्म खोजने के निमित्त मृत्यु चली। कर्म वासना का नाम है। वहां जाकर ब्राह्मण के कर्मों को ढूंढने लगी और दशो दिशा में ताल, समुद्र, बगीचे और द्वीप से द्वीपांतर इत्यादि सब स्थान खोजती फिरी, परंतु ब्राह्मण के कर्मों की प्रतिभा कहीं न पाई। हे रामचंद्र जी, मृत्यु बड़ी बलवंत है, परंतु उस ब्राह्मण के कर्मों को उसने न पाया। तब फिर धर्मराज के पास गई, जो संपूर्ण संशयों को नाश करने वाले और ज्ञान स्वरूप है, और उनसे कहने लगी, हे संशयों के नाश करता, इस ब्राह्मण के कर्म मुझको कहीं नहीं दृष्टि आते। मैंने बहुत प्रकार से ढूंढा। जो शरीरधारी है सो सब कर्म संयुक्त है, पर इसका तो कर्म कोई भी नहीं है, इसका क्या कारण है? यम बोले, हे मृत्यु, इस ब्राह्मण की उत्पत्ति शुद्ध चिदाकाश से हुई है, जहां कोई कारण न था। जो कारण बिना भासता है सो ईश्वर रूप है। हे मृत्यु, शुद्ध आकाश से जो इसकी उत्पत्ति हुई है तो यह भी वही रूप है। यह ब्राह्मण भी शुद्ध चिदाकाश रूप है और इसका चेतन ही वपु है। इसका कर्म कोई नहीं और न कोई क्रिया है, अपने स्वरूप से आप ही इसका होना हुआ है। इस कारण इसका नाम स्वयंभू है और सदा अपने आप में स्थित है। इसको जगत कुछ नहीं भासता, सदा अद्वैत है। मृत्यु बोली, हे भगवान, जो यह आकाश रूप है तो साकार रूप क्यों दृष्टि आता है? यम जी बोले, हे मृत्यु, यह सदा निराकार चैतन्य वपु है और इसके साथ आकार और अहम भाव भी नहीं है, इससे इसका नाश कैसे हो? यह तो अहम तुम जानता ही नहीं और जगत का निश्चय भी इसको नहीं है। यह ब्राह्मण अचेत चिन्मात्र है, जिसके मन में पदार्थों का सद्भाव होता है उसका नाश भी होता है, और जिसको जगत भासता ही नहीं उसका नाश कैसे हो? हे मृत्यु, जो कोई बड़ा बलिष्ठ भी हो और सैकड़ों जंजीरें भी हो तो भी आकाश को बांध न सकेगा, वैसे ही ब्राह्मण आकाश रूप है, इसका नाश कैसे हो? इसके नाश करने का उद्यम त्याग कर देहधारियों को जाकर मारो, यह तुमसे न मरेगा। हे रामचंद्र जी, यह सुनकर मृत्यु आश्चर्यवत हो अपने गृह लौट आई। राम जी बोले, हे भगवान, यह तो हमारे बड़े पितामह ब्रह्मा की वार्ता तुमने कही है। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह वार्ता तो मैंने ब्रह्मा की ही कही है, परंतु मृत्यु और यम के विवाद निमित्त यह कथा मैंने तुमको सुनाई है। इस प्रकार जब बहुत काल व्यतीत होकर कल्प का अंत हुआ, तब मृत्यु सब भूतों को भोजन कर फिर ब्रह्मा को भोजन करने गई। जैसे किसी का काम हो और यदि एक बार सिद्ध न हुआ तो वह उसे छोड़ नहीं देता, फिर उद्यम करता है, वैसे ही मृत्यु भी ब्रह्मा के सम्मुख गई। तब धर्मराज ने कहा, हे मृत्यु, यह ब्रह्मा है, यह आकाश रूप है और आकाश ही इसका शरीर है। आकाश के पकड़ने को तुम कैसे समर्थ होगी? यह जो पंचभूत के शरीर से रहित है, जैसे संकल्प पुरुष होता है तो उसका आकाश ही वपु है, वैसे यह आकाश रूप आदि अंत मध्य और अहम त्वम के उल्लेख से रहित और अचेत चिन्मात्र है, इसके मारने को तू कैसे समर्थ होगी? यह जो इसका वपु भासता है सो ऐसा है जैसे शिल्पी के मन में स्तंभ की पुतली होती है, पर वह कुछ हुई नहीं है, वैसे ही स्वरूप से इतर इसका होना नहीं है। यह तो ब्रह्म स्वरूप है, हमारे तुम्हारे मन में इसकी प्रतिभा हुई है, यह तो निर्वपु है। जो पुरुष देहवंत होता है उसको ग्रहण करना सुगम होता है और वंध्या के पुत्र के ग्रहण में श्रम होता है, क्योंकि निर्वपु है, वैसे ही यह भी निर्वपु है। इसके मारने की कल्पना को त्याग देहधारियों को जाकर मारो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, शुद्ध चिन्मात्र सत्ता ऐसे सूक्ष्म है कि उसमें आकाश भी पर्वत के समान स्थूल है। उस चिन्मात्र में जो अहम अस्मि चैतन्य मुखत्व हुआ है, उसने अपने साथ देह को देखा, पर वह देह भी आकाश रूप है। हे रामचंद्र जी, शुद्ध चिन्मात्र में चैत्य का उल्लेख किसी कारण से नहीं हुआ, स्वतः स्वाभाविक ही ऐसा उल्लेख आए फुरा है, उसी का नाम स्वयंभू ब्रह्म है। उस ब्रह्म को सदा ब्रह्मा ही का निश्चय है, ब्रह्मा और ब्रह्म में कुछ भेद नहीं है। जैसे समुद्र और तरंग में, आकाश और शून्यता में, और फूल और सुगंध में कुछ भेद नहीं, वैसे ही ब्रह्मा और ब्रह्म में भेद नहीं है। जैसे जल द्रवता के कारण तरंग रूप होकर भासता है, वैसे ही आत्मसत्ता चैतन्यता से ब्रह्मा होकर भासती है। ब्रह्मा दूसरी वस्तु नहीं, सदा चैतन्य आकाश है और पृथ्वी आदि तत्वों से रहित है। हे रामचंद्र जी, न कोई इसका कारण है और न कोई कर्म है। राम जी बोले, हे भगवान, आपने कहा कि ब्रह्मा जी का वपु पृथ्वी आदि तत्वों से रहित है और संकल्प मात्र है, तो इसका कारण स्मृति रूप संस्कार क्यों न हुआ? जैसे हमको और जीवों की स्मृति है, वैसे ही ब्रह्मा को भी होनी चाहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, स्मृति संस्कार उसी का कारण होता है जो आगे भी देखा हो। जो पदार्थ आगे देखा होता है उसकी स्मृति संस्कार से होती है, और जो देखा नहीं होता उसकी स्मृति नहीं होती। ब्रह्मा जी अद्वैत, अज और आदि, मध्य, अंत से रहित है, उनकी स्मृति कारण कैसे हो? वह शुद्ध बोध रूप है और आत्म तत्व ही ब्रह्मा रूप होकर स्थित हुआ है। अपने आप से जो इसका होना हुआ है, इसी से इसका नाम स्वयंभू है। शुद्ध बोध में चैत्य का उल्लेख हुआ है, अर्थात चित्त चैतन्य स्वरूप का नाम है। अपना चित्त संवित ही कारण है और दूसरा कारण कोई नहीं। सदा निराकार और संकल्प रूप इसका शरीर है, और पृथ्वी आदि भूतों से शुद्ध अंतवाहक वपु है। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, जितने जीव हैं उनके दो शरीर हैं, एक अंतवाहक और दूसरा आधिभौतिक। ब्रह्मा का एक ही अंतवाहक शरीर कैसे है, यह वार्ता स्पष्ट कर कही है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो सकारण रूप जीव है उनके दो दो शरीर हैं, पर ब्रह्मा जी अकारण है, इस कारण उनका एक अंतवाहक ही शरीर है। हे राम जी सुनिए, अन्य जीवों का कारण ब्रह्मा है, इसी कारण यह जीव दोनों देहों को धरते हैं, और ब्रह्मा जी का कारण कोई नहीं, यह अपने आप ही उपजे है, इनका नाम स्वयंभू है। आदि में जो इनका प्रादुर्भाव हुआ है सो अंतवाहक शरीर है। इनको अपने स्वरूप का विस्मरण नहीं, सदा अपने वास्तव स्वरूप में यह स्थित है, इसे अंतवाहक है और दृश्य का अपना संकल्प मात्र जानते हैं। जिनको दृश्य में दृढ़ प्रतीति हुई है उनको आधिभौतिक कहते हैं। जैसे आधिभौतिक जड़ता से जल की बर्फ होती है, वैसे ही दृश्य की दृढ़ता आधिभौतिक होती है। हे रामचंद्र जी, जितना जगत तुमको दृष्टि आता है सो सब आकाश रूप है। पृथ्वी आदि भूतों से नहीं हुआ, केवल भ्रम से आधिभौतिक भासते हैं। जैसे स्वप्न नगर आकाश रूप होता है, किसी कारण से नहीं उपजा और न किसी पृथ्वी आदि तत्वों से उपजा है, केवल आकाश रूप है, और निद्रा दोष से आधिभौतिक होकर भासता है, वैसे ही यह जागृत जगत भी अज्ञान से आधिभौतिक आकाश भासता है। जैसे अज्ञान से स्वप्न अर्थाकार भासता है, वैसे ही जगत अज्ञान से अर्थाकार भासता है। हे रामचंद्र जी, यह संपूर्ण जगत संकल्प मात्र है और कुछ बना नहीं। जैसे मनोराज के पर्वत आकाश रूप होते हैं, वैसे ही जगत भी आकाश रूप है। वास्तव में कुछ बना नहीं, सब पुरुष के संकल्प है और मन से उपजे है। जैसे बीज से देश काल के संयोग से अंकुर निकलता है, वैसे ही सब दृश्य मन से उपजता है। वह मन रूपी ब्रह्मा है और ब्रह्मा अधिक मन रूप है। उनके संकल्प में जो संपूर्ण जगत स्थित है, वह सब आकाश रूप है, आधिभौतिक कोई नहीं। हे रामचंद्र जी, आधिभौतिक जो आत्मा में भासता है सो भ्रांति मात्र है। जैसे बालक को परछाई में वेताल भासता है, वैसे ही अज्ञानी को जो आदि भौतिक भासते हैं सो भ्रांति मात्र है, वास्तव में कुछ नहीं। हरि हरि सहनाभवतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।